हरे कृष्णा। तो आप लोग जानते हैं कल बहुत ही विशेष दिन है। कल जो आएगा वो बहुत ही विशेष दिन होगा। क्या है कल जो होगा? क्या है? सीता महारानी का विरवा दिवस कल आएगा, ठीक है ना। तो कल हमारे मंदिर में तो अभिषेक भी होगा, क्योंकि हमारे मंदिर में सीता राम लक्ष्मण हनुमान हैं। है? तो आप लोग आमंत्रित हैं। अधिक से अधिक संख्या में 10:30 बजे अभिषेक होगा। तो फिर हमने विचार किया कि आज हम सीता महारानी का कुछ चरित्र सुनेंगे, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। ये मैं सुना रहा हूँ पद्म पुराण से। पद्म पुराण में ये जो कथा है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। कौन सुना रहे हैं? शेष जी सुना रहे हैं, समझ रहे हैं? कौन सुना रहे हैं? शेष जी हैं। शेष जी जो भगवान की सैया हैं, जिनके कितने मुख हैं? कितने मुख हैं? अनंत मुख नहीं है, 1000 मुख हैं। अनंत उनको कहा जाता है। उनका शरीर इतना बड़ा है कि उनके शरीर का कोई अंत नहीं है, लेकिन मुख अनंत नहीं है, 1000 मुख हैं। 1000 मुख भी कम नहीं है। 1000 मुख भी कम नहीं है, तो वे सुना रहे हैं ये कथा। अगर वो सुनाए कथा, शेष जी स्वयं सुनाए कथा, तो कैसी कथा होगी आप लोग समझ लो। तो मैं नहीं सुना रहा हूँ, मेरे मुख से वो सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? शेष जी सुना रहे हैं। तो आप लोग शेष जी से सुन रहे हैं, ठीक है। और सुन रहे कथा वात्स्यायन मुनि, वात्स्यायन मुनि कथा सुन रहे हैं। तो ये प्रश्न उन्होंने किया, वात्स्यायन मुनि ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, पहले आप बता चुके हैं कि श्री राम ने एक धोबी की निंदा करने पर सीता को अकेले वन में छोड़ दिया। एक बड़े दुख की बात, बड़े आश्चर्य की बात है और बड़ी लज्जा की बात है कि एक धोबी के कहने से श्री राम ने सीता को अकेले वन में छोड़ दिया है। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि धोबी के कहने से श्री राम ने सीता को वन में छोड़ दिया, है ना। कहाँ तक उचित है, एक प्रश्न उठता है ये, है ना। तो वात्स्यायन कहते हैं, वात्स्यायन मुनि कहते हैं कि ऐसा आपने बताया, फिर कहाँ उनके पुत्र हुए? सीता जी को फिर पुत्र कहाँ हुए? कहाँ उन्हें धनुष धारण की क्षमता प्राप्त हुई? किनको? हाँ, लवकुश को धनुष धारण की क्षमता कहाँ प्राप्त हुई? और कहाँ उन्होंने अस्त्र विद्या की शिक्षा पाई जिससे वे श्री राम के घोड़े का अपहरण कर सके? श्री राम के घोड़े का भी उन्होंने अपहरण किया और युद्ध किया और परास्त किया। तो ये सब एक से एक बढ़कर के आश्चर्य की बातें हैं, है ना, है ना। तो आप सुनिए, शेष जी ने कहा कि मुने, श्री राम धर्मपूर्वक सारी पृथ्वी का शासन करते हुए अपनी धर्म पत्नी महारानी सीता और भाइयों के साथ अयोध्या का राज्य करने लगे। इसी बीच में सीता जी ने गर्भ धारण किया, है ना। तो आपका क्या विचार है, इसी बीच में यानी कितना समय बीता होगा? जब भगवान राम वनवास से आए, 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आए हैं, और फिर उन्होंने राज्य संभाला है? तो सीता जी ने गर्भ धारण किया और इसी अवस्था में उनको वनवास प्राप्त हो गया, सीता जी को वनवास प्राप्त हुआ। तो आपका क्या विचार है, कितने दिन बीते होंगे श्री राम को सीता के साथ राज्य करते हुए? कितने दिन बीते होंगे? आजकल ज़्यादा जो प्रचलित है वो तो यही है कि ज़्यादा दिन नहीं बीते। लेकिन जैमिनी अश्वमेध पर्व में जो लिखा है उससे मुझे बड़ा बल मिला और बहुत इससे मतलब क्या शांति मिली कि 10,000 साल तक जो है सीता जी ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया। आप समझे, 10,000 साल तक श्री राम सीता के साथ रहे, अयोध्या में राज्य करते रहे, ठीक है ना। तो उन दिनों में जो है 10,000 साल की आयु सामान्य होती थी राजाओं की, है ना। तो राजा लोग जो है 30 साल में 40 साल में संतान उत्पन्न नहीं करते थे। आप समझ रहे, मान लो 30-40 साल में अगर संतान पैदा कर दिया है तो 10,000 साल के जब होंगे राजा तो वो पुत्र भी तो 10,000 साल का हो जाएगा। आप समझे, तो फिर राज्य किसको सौंपेंगे, है ना। तो 10,000 साल की अवस्था के बाद जो है सीता ने पुत्र को जन्म दिया, है ना। और संतान जन्म ना दे, संतान को जन्म नहीं देना है तो इंद्रिय तृप्ति भी नहीं करना है। आजकल की विधि नहीं है, गलत विधि, कि गलत विधि के द्वारा बच्चे पैदा ना हो लेकिन इंद्रिय तृप्ति करें, ऐसा नहीं है, है? मतलब भगवान राम जो राजर्षी हैं, ऐसे राजा लोग जो है राजर्षी होते हैं, तो अगर बच्चे पैदा नहीं करने हैं विवाह के बाद भी तो वे सहवास नहीं करते। आप समझ रहे, तो ये जो है मतलब जीवन है, ऐसा पवित्र जीवन है ना। तो 10,000 साल के बाद ही जो है सीता जी ने पुत्रों को जन्म दिया। तो यहाँ सीता जी ने गर्भ धारण किया, धीरे धीरे 5 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए सीता जी को श्री राम के साथ। एक दिन श्री राम ने सीता जी से पूछा, देवी इस समय तुम्हारे मन में किस बात की अभिलाषा है, बताओ मैं उसे पूर्ण करूँगा। भगवान राम कहते हैं, सीता जी ने कहा, प्राणनाथ आपकी कृपा से मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्य में भी भोगते रहूंगी। इस समय मेरे मन में किसी विषय की इच्छा शेष नहीं है। जिस स्त्री को आप जैसे स्वामी मिले, जिनके चरणों के देवता भी स्तुति करते हैं, उसको सभी कुछ प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। देखो कैसा उत्तर सीता जी का, सीता जी का क्या उत्तर है, है? कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, आप जैसे पति अगर मुझे मिल गए है तो अब मुझे और क्या चाहिए। फिर भी यदि आप आग्रह पूर्वक मुझसे मेरे मन की अभिलाषा पूछ रहे हैं तो मैं आपके सामने सच्ची बात कहती हूँ। नाथ बहुत दिन हुए मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए हैं। कौन, किन के दर्शन नहीं किए, किन के दर्शन नहीं किए हैं? लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए। लोपामुद्रा अगस्त की पत्नी है, अगस्त मुनि है, और वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति, ऐसे बड़े बड़े जो ऋषि हैं उनकी पत्नियां है ना, वो पतिव्रताएं हैं। तो सीता जी क्या कह रही हैं, मैंने बहुत दिन से इन पतिव्रताओं के दर्शन नहीं किए हैं। जैसे मनुष्य को जो है, पुरुष को सत्संग की आवश्यकता है, साधु संघ की आवश्यकता है, उसी प्रकार से स्त्रियों को साध्वी संघ की आवश्यकता है। साध्वी, आप समझ रहे हैं, साधु का स्त्री लिंग क्या होता है, साध्वी, है ना। सत्संग तो सती, सत या साधु, तो सत का स्त्रीलिंग क्या है, सती, है ना। तो स्त्रियों को जो है सती संघ चाहिए, साध्वी संघ चाहिए, पुरुषों को सत्संग चाहिए, साधु संघ चाहिए। तो सीता महारानी क्या अभिलाषा कर रहे हैं कि बहुत दिनों से मुझे ऐसी देवियों का संग नहीं मिला है, है ना। मेरा मन इस समय उन्हीं को देखने के लिए उत्कंठित है, वे सब तपस्या की भंडार हैं। ये ऋषियों की जो पत्नियां हैं ये भी जो है अपने पतियों के साथ तपस्या में लगी रहती हैं, तो मुझे इन देवियों का दर्शन करना है। मैं वहां जाकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करूंगी, उन्हें चमकीले रत्न और आभूषण भेंट दूंगी, यही मेरा मनोरथ है, प्रीतम इसे पूर्ण कीजिए। इस प्रकार सीता जी के मनोहर वचन सुनकर श्री राम को बड़ी प्रसन्नता हुई, है ना। और वे अपनी प्रियतमा से बोले, जनक किशोरी तुम धन्य हो। भगवान राम ने प्रशंसा की, ऐसी अभिलाषा, अगर अभिलाषा हो तो ऐसी होनी चाहिए, है? ये नहीं कि अभिलाषा बहुत दिनों से टीवी नहीं देखा है, सिनेमा नहीं देखे हैं, वो नहीं है। हाँ, लेकिन अगर सिनेमा टीवी में अगर कृष्ण कथा हो तब तो अच्छी बात है, सबसे बढ़िया है, है ना। और नहीं तो जो है अगर विषय कथा है तो वो तो सब जो है नरक में ले जाएंगे, है ना। तो आजकल ज़्यादा ज़्यादा जो टीवी है, सिनेमा है, इनमें विषय कथा होती है, नरक ले जाने वाली है। तो सीता महारानी की जो अभिलाषा है उसकी प्रशंसा भगवान राम ने की और क्या बोले, जनक किशोरी तुम धन्य हो, कल प्रातःकाल जाना और उन तपस्वियों का दर्शन करके कृतार्थ होना। श्री राम के वचन सुनकर सीता जी को बड़ा हर्ष हुआ, वे सोचने लगी कल प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियों के दर्शन होंगे। अब देखो कैसी मतलब व्यवस्था है भगवान की, कि यहाँ सीता जी की इच्छा है तपस्विनी देवियों के दर्शन करने की इच्छा है ना, और भगवान राम ने कहा कि हाँ तुम दर्शन करोगी, तो सीता जी का तो विचार था कि वे दर्शन करके वापस आ जाएंगी हैं, लेकिन भगवान की ऐसी व्यवस्था बन रही है वो सीता जी को भी पता नहीं है और श्री राम को भी पता नहीं है, मतलब लीला से अगर देखा जाए मनुष्य की लीला के अनुसार तो श्री राम को भी पता नहीं है। तो सीता ने तो कहा कि तुम, राम ने तो कहा कि तुम जो है जाओ कल सवेरे जाओ, लेकिन फिर व्यवस्था ऐसी बनी भगवान की कि सीता जी वहाँ जाएंगी और वहीं पर रहेंगी, उन देवियों के साथ रहेंगी, है ना। तो ये भी एक अच्छा संग है, सीता जी को जो प्राप्त हुआ वो एक बहुत अच्छा संग प्राप्त हुआ, है ना। तो वहाँ ऋषि मुनियों के जो है आश्रम में सीता जी रहेंगी और गर्भ में जो बालक है उनको भी बहुत अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे, पवित्र संस्कार प्राप्त होंगे। तो ये सब जो है मतलब जो व्यवस्था है भगवान की ओर से वो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि गर्भ काल में जो है स्त्री को आध्यात्मिक वातावरण में रहना चाहिए, और आध्यात्मिक वातावरण में अगर स्त्री रहती है तो गर्भ के अंदर जो संस्कार बनता है बच्चे का वो आध्यात्मिक बनता है, और फिर वो बच्चा है तो उसमें आध्यात्मिक गुण विकसित होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रबल संस्कार वो होता है, गर्भ का संस्कार होता है, है ना। तो केवल ये नहीं है कि भाई दोष ही देखे हैं कि भाई राम ने सीता का त्याग कर दिया, ये कहाँ तक उचित है, लेकिन देखो कि इसमें कितना गुण है, राम ने सीता का त्याग किया तो इसमें कितना गुण है, है ना। और राम ने सीता को ऐसे त्याग नहीं किया कि जहाँ कोई रक्षा ना हो कोई सुरक्षा ना हो ऐसे त्याग दिया, ऐसा नहीं है, है ना। कहाँ त्यागा, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में त्यागा, है जहाँ उनकी सब प्रकार की सुरक्षा और सबसे बड़ी आध्यात्मिक सुरक्षा हो, भौतिक सुरक्षा भी और आध्यात्मिक सुरक्षा भी, है ना। सबसे बड़ी चीज पे है आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त हुआ सीता जी को, तो एक बहुत बड़ी मतलब ये बात है। लेकिन अभी तो सीता जी को ये पता नहीं है, है ना, श्री राम को भी पता नहीं है, है ना। तो सीता जी ने ये सोचा, अब उसी रात में श्री राम ने सीता से ये बात की थी और सवेरे निश्चित हो चुका था कि सीता जी आएंगी, तो इसी रात में क्या हुआ, श्री राम के भेजे हुए गुप्तचर नगर में गए। अब राम के भेजे गुप्तचर नगर में जाते हैं, ये देखो कितनी कितनी बड़ी बात है कि अयोध्या में जो राजा हैं, अयोध्या के राजा हैं राम, तो उनको ये चिंता है कि प्रजा को किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है, और प्रजा स्वयं आकर के नहीं बताती है, वो स्वयं सभा में बैठे हुए हैं कि कोई आए अपनी कोई परेशानी बताए, और लोग नहीं आते हैं तो वे गुप्तचर भेज करके पता लगाते हैं कि किसी को कोई शिकायत तो नहीं। सोचिए क्यों छिप करके, कि भाई सामने कोई नहीं बोलता है तो घर में आपस में फिर बातें करते हैं तो मन की बातें निकलती हैं, अगर मान लो कोई किसी से एक दूसरे से भी नहीं बोलते हैं तो घर के अंदर फिर वो दिल का जो निकलता है आक्रोश वो निकलता है, निकलता है कि नहीं, अपने घर में तो पत्नी पति से बोलेगी या पति पत्नी से बोलेगा, तो वो भी जो है गुप्तचर सुनते हैं भाई कोई शिकायत तो नहीं है, क्या ऐसा राजा हो सकता है कोई संसार दुनिया में ऐसा राजा हो सकता है। आजकल तो क्या है कि जितनी भी मतलब शिकायतें करो जितने भी करो उनके कान ही नहीं है, सुनते ही नहीं है कुछ भी, और कितने हजारों जो है पेपर शिकायतें आदि हैं तो सब जो है टेबल में दबे पड़े रहते हैं, 10 साल के बाद 20 साल के बाद सुनवाई होती है, जब मर जाएगा वो आदमी तब उसका केस जो है सुना जाता है, 10 साल के बाद 20 साल के बाद सुनवाई होती है केस की, और यहाँ पर कोई पेपर नहीं है कोई, मैं ना सीधे श्री राम के पास जाओ और बताओ कि बीच में कोई और व्यक्ति नहीं होगा जो बात को बदलेगा, कि पेपर जो है लिखो फिर वकील के द्वारा जो है उसको केस करो उसका, है ना, सब कुछ नहीं है, कोई वकील नहीं कुछ नहीं, अपना केस सीधे राजा के पास लाओ और सुनाओ और साथ साथ निपटारा निर्णय भी साथ साथ होगा, 10 साल बाद 20 साल के बाद वो फाइल जो है चलती रहती हैं उस केस की, कुछ नहीं है, है ना, और फिर भी लोग नहीं आ रहे हैं। तो देखो गुप्तचर भेज रहे हैं कि पता लगाओ, हैं, कान लगा करके, दीवार में कान लगा करके सुनो कि किसी को कुछ शिकायत तो नहीं है। तो श्री राम गुप्तचरों को भेजते हैं कि वे लोग घर घर जाकर महाराज की कीर्ति सुनें और देखें, हाँ, उनके प्रति लोगों के मन में क्या भाव है इसका पता लग सके। वे दूत आधी रात के समय चुपके से गए, उन्हें प्रतिदिन श्री राम की मनोहर कथाएं सुनने को मिलती थीं। तो दूत लोग जो है, गुप्तचर लोग जो है, जाते थे तो उनका एक नियम ही बन गया था कि हमें श्री राम की जो है महिमा सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमेशा कोई शिकायत मतलब हो ही नहीं रही कहीं पर। उस दिन वे एक धनी के विशाल भवन में प्रविष्ट हुए और थोड़ी देर तक वहाँ रुके तो सुनाई दिया, बड़ी अच्छी बातें सुनने को मिली। क्या? वहाँ सुंदर नेत्रों वाली कोई युवती बड़े हर्ष में भरकर अपने नन्हे शिशु को दूध पिला रही थी। अब सुनिए बड़े ध्यान से, आप लोग की गुप्तचर इस समय गुप्तचर की तरह समझिए, तो सुनिए बड़े ध्यान से। एक युवती जो है अपने नन्हे शिशु को दूध पिला रही थी, उसने बालक से बड़ी मनोहर बात कही, बेटा तू जी भरकर मेरा मीठा दूध पी ले, पीछे ये तेरे लिए दुर्लभ हो जाएगा, आगे नहीं मिलेगा दूध, अभी जितना पीना है पी ले, आगे नहीं मिलेगा, क्योंकि श्री राम के राज्य में दोबारा जन्म नहीं होता। नील कमल दल के समान श्याम वर्ण वाले श्री राम इस अयोध्यापुरी के स्वामी हैं, उनके नगर में निवास करने वाले लोगों का फिर इस संसार में जन्म नहीं होगा, और जन्म नहीं होगा तो दूध पीने का अवसर नहीं मिलेगा, कि जितना दूध पीना है अभी पी ले। जन्म ना होने पर दूध पीने का अवसर कैसे मिलेगा, इसलिए मेरे लाल तू इस दुर्लभ दूध का बारम्बार पान कर ले। जो लोग श्री राम का भजन ध्यान और कीर्तन करेंगे उन्हें कभी भी माता का दूध प्राप्त नहीं होगा। ये बड़ा भारी ये बड़ा भारी दोष है राम के भजन का कि माता का दूध फिर जो है प्राप्त नहीं होगा। इस तरह श्री राम के यश रूपी अमृत से भरे हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बड़े प्रसन्न हुए कि छिप करके भी लोग जो है श्री राम का गुणगान कर रहे हैं, कि छिप करके तो लोग बोलते हैं ऐसा है वैसा है, ऊपर से बोलेंगे हाँ बहुत अच्छे हैं प्रभु जी, और पीठ पीछे ये परेशानी ये है वो है, लेकिन नहीं। और दूसरे किसी भाग्यशाली पुरुष के घर में गए तो अलग अलग विभिन्न घरों में जाकर श्री राम के यश का श्रवण करते थे। एक घर की बात है, एक गुप्तचर श्री राम का यश सुनने की इच्छा से वहाँ आया और क्षण भर रुका रहा। उस घर की एक सुंदरी नारी जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे पलंग पर बैठे हुए कामदेव के समान सुंदर अपने पति की ओर देख करके बोली, स्त्री जो है अपने पति को बोली, नाथ आप मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मानो श्री राम साक्षात श्री राम हो। पत्नी जो है अपने पति को बोलती है, तो ये विधि है कि स्त्री जो है पति को भगवान का रूप माने, है ना, लेकिन पति को नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान बन गया हूँ, तो पति क्या उत्तर देता है अब सुनिए। प्रीतमा के मनोहर वचन सुनकर उसके पति ने कहा, प्रिय मेरी बात सुनो, तुम साधु हो अतः तुमने जो कुछ कहा है वो मन को बहुत प्रिय लगने वाला है, प्रतिव्रताओं के योग ये बात है, सती नारी के लिए उसका पति श्री राम का ही स्वरूप है, परंतु कहाँ मेरे जैसा मंद भाग्य और कहाँ महाभाग्यशाली श्री राम। पति क्या कहता है, कोई तुलना नहीं है, तुम्हारी दृष्टि में मैं हूँ तो ये पतिव्रता का ही कर्तव्य है कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन जहाँ तक सच है वो क्या है, कहाँ कीड़े जैसा मैं तुच्छ जीव और कहाँ ब्रह्म आदि देवताओं से पूजित भगवान श्री राम, कोई अंतर ही नहीं, कोई तुलना ही नहीं, कहाँ जुगनू और कहाँ सूर्य, आप समझिए, तो ये विधि है, आपने को ऐसा समझना है, कहाँ पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ पतिंगा और कहाँ गरुड़, कहाँ गलियों का गंदला पानी और कहाँ गंगा जी का जल। तो मैं तो मतलब वैसा हूँ, नाली का पानी जैसा हूँ, और भगवान राम कैसे गंगा जल जैसे हैं, इसी प्रकार कहाँ मैं और कहाँ श्री राम, जिनके चरणों की धूल पड़ने से शिला मई अहिल्या क्षण भर में सौंदर्य से युक्त युवती बन गई। तो ऐसी बातें होती हैं घर घर में, है ना? अच्छा, इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरे के घर में कुछ बातें सुन रहा था, वहाँ कोई स्त्री पलंग पर वीणा बजाती हुई अपने पति के साथ श्री राम का गुणगान कर रही थी। क्या बोली, स्वामी हम लोग धन्य हैं जिनके नगर के स्वामी साक्षात भगवान श्री राम हैं, जो अपनी प्रजा को पुत्रों की भांति पालते और योग क्षेम की व्यवस्था करते हैं। कौन कह रही, कौन कह रही, पत्नी कह रही, किससे कह रही, पति से कह रही। उन्होंने बड़े बड़े दुष्कर कर्म किए हैं जो दूसरों के लिए असाध्य हैं। उन्होंने समुद्र को वश में किया, उस पर पुल बांधा, बाणों से लंकापुरी का विध्वंस कराया, अपने शत्रु रावण को मारकर वे जानकी जी को यहाँ ले आए। इस प्रकार श्री राम ने महापुरुषों के आचरण का पालन किया। पत्नी के मधुर वचन सुनकर पति मुस्कुराया और उसे इस प्रकार बोले, मुग्धे रावण को मारना और समुद्र का दमन जैसे कार्य, वे श्री राम के लिए कोई महान कार्य नहीं है। महान परमेश्वर ही ब्रह्मा आदि की प्रार्थना से लीला पूर्वक इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाले उत्तम चरित्र का विस्तार करते हैं। कौन बोला, पति बोला, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम को तुम मनुष्य ना समझो, वे इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। केवल लीला करने के लिए ही उन्होंने मनुष्य विग्रह धारण किया है। हम लोग धन्य हैं जो प्रतिदिन श्री राम के मुख कमल का दर्शन करते हैं, जो ब्रह्मा आदि देवों के लिए भी दुर्लभ है। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए हम बड़े पुण्यात्मा हैं। गुप्त चरण दरवाजे पर खड़े होकर इस प्रकार की बहुत सी बातें सुनी। आप समझ रहे हैं, और ये बातें जो है 10,000 साल से सुनी जा रही हैं। 10,000 साल हो चुके हैं राम के, तो ये गुप्तचर भी जो है 10,000 सालों से ये बातें सुन रहे हैं। कभी सोची नहीं कि कुछ और कोई उल्टी बात होगी, है ना। इसके सिवा एक अन्य गुप्तचर अपने सामने धोबी का घर देखकर वहीं महाराज श्री राम का यश सुनने की इच्छा से गया। उसे सोचा ही नहीं था कि कोई उल्टी बात होगी और ये धोबी करेगा उल्टी बात, किंतु उस घर का स्वामी धोबी क्रोध में भरा हुआ था। उसकी पत्नी दूसरे के घर में दिन का अधिक समय व्यतीत करके आई थी। उसने आंखें लाल लाल करके पत्नी को धिक्कारा, उसे लात मार कर कहा, निकल जा मेरे घर से, जिसकी यहाँ सारा दिन बिताया है उसी के घर चली जा, तू दुष्टा है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है, इसलिए मैं तुझे नहीं रखूंगा। उस समय उसकी माता ने कहा, किसकी माता ने, धोबी की माता ने कहा, बेटा बहू घर में आ गई है, इस बेचारी का त्याग मत करो, ये सर्वथा निरपराध है, इसने कोई कुकर्म नहीं किया है। धोबी तो क्रोध में था ही, उसने माता को जवाब दिया, मैं राम जैसा नहीं हूँ जो दूसरे के घर में रही हुई प्यारी पत्नी को फिर से ग्रहण कर लूँ। वे राजा हैं, जो कुछ भी करेंगे सब न्यायुक्त ही माना जाएगा, मैं तो दूसरे के घर में निवास करने वाली भार्या को कदापि नहीं ग्रहण कर सकता। धोबी की बात सुनकर गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ, क्रोध तो होना चाहिए ना, गुप्तचर को बड़ा क्रोध हुआ, उसने तलवार हाथ में लेकर उसे मार डालने का विचार किया। अभी धोबी को कुछ पता ही नहीं है कि कोई कोई सुन रहा है ना, और उसने तलवार निकाल करके सोचा कि मार डालूं अभी इसको, परंतु सहसा उसे श्री राम के आदेश का स्मरण हुआ। उन्होंने आज्ञा दी थी, मेरी किसी प्रजा को प्राण दंड नहीं देना, केवल सुन करके मुझे बताओ। राजा की आज्ञा है, केवल सुन करके मुझे बताना है। इस बात को समझकर उसने अपना क्रोध शांत कर लिया। उस समय धोबी की बातें सुनकर उससे बड़ा दुख हुआ था। कुपित होकर बार बार उच्छ्वास खींचता हुआ, मतलब लंबी सांस खींच रहा था, उस स्थान पर गया जहां उसके साथी अन्य गुप्तचर मौजूद थे। मतलब रात बीत गई तो सब गुप्तचर इकट्ठे एक स्थान में होते हैं, उस स्थान में वो भी आया। वे सब आपस में मिले, सबने एक दूसरे को अपना सुना हुआ श्री राम का चरित्र सुनाया। भाई तुमने क्या सुना, और तुमने क्या सुना, और तुमने क्या सुना, तो सब एक दूसरे से बताते हैं। अंत में धोबी की बात सुनकर उन्होंने आपस में सलाह की। अब जिसने सुना था धोबी की बात, उसने बताई धोबी की बात, तो सब गुप्तचरों ने आपस में सलाह की। क्या निश्चय किया कि दुष्टों की कही हुई बात श्री राम से नहीं कहना चाहिए। ठीक है ना, सही है, दुष्टों की कही हुई बात श्री राम से नहीं कहनी चाहिए। ऐसा विचार करके वे घर में जाकर सो गए। नहीं तो रात नहीं आते, रात नहीं आते राम को बताने के लिए, लेकिन आए ही नहीं, जाएंगे तो बताना पड़ेगा, इसलिए घर में जाके सो गए। फिर कोई भी नहीं गया, ये सब इकट्ठे जाते थे और राम जो है सबकी बात सुनते थे, तुमने क्या सुना। तो सब इकट्ठे जो है मतलब गए ही नहीं, फिर अपने अपने घरों में चले सो गए। उन्होंने अपनी बुद्धि से स्थिर किया कल प्रातःकाल समाचार कहा जाएगा, अब सवेरे कहा जाएगा, जितना देरी हो उतनी अच्छा है, ये बात बताने में जितना देर हो उतनी अच्छा है। तो प्रातःकाल श्री जी कहते हैं, श्री राम ने प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त होकर ब्राह्मणों को विधिपूर्वक स्वर्ण दान से संतुष्ट किया, उसके बाद राजसभा में गए। सभा लगती थी प्रातःकाल से, प्रातःकाल मतलब 5:46 से प्रातःकाल शुरू होता है, है ना, तो प्रातःकाल से ही सभा लगती थी। आजकल के ऑफिस कब खुलते हैं, 10:30, 10:30, 11:00, है ना, ऐसा नहीं, प्रातःकाल सभा में आ गए सब ब्राह्मण लोग, श्री राम आ गए। श्री राम सारी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे, अतः सब लोग उनको प्रणाम करने के लिए वहाँ गए। लक्ष्मण ने राजा के मस्तक पर छत्र लगाया और भरत शत्रुघ्न ने 2 चमर धारण किए। वशिष्ठ आदि महर्षि और सुमंत्र आदि मंत्री भी उपस्थित होकर भगवान की उपासना करने लगे। इसी समय वे गुप्तचर अच्छी तरह सज धज कर सभा में बैठे हुए महाराज को नमस्कार करने के लिए आए। तो प्रातःकाल आए गुप्तचर। श्री राम ने उन सभी गुप्तचरों को एकांत में बुलाकर पूछा, एकांत बुलाया, जब गुप्तचरों को देखा तो श्री राम भी सभा से उठ करके एकांत में आ गए, एक अलग कमरे में चले गए। गुप्तचरों की बातें सुनना है तो गुप्त रूप से सुनना है, तो जैसे देखा तो इशारा किया तो वो भी आ गए और राम भी अलग कमरे में चले गए सभा से अलग। पूछा, तुम लोग सच बताओ, नगर के लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं, मेरे धर्म पत्नी के विषय में उनकी कैसी धारणा है, और मेरे मंत्रियों का बर्ताव वे लोग कैसा बतलाते हैं, कोई शिकायत मेरे विषय में, मेरी पत्नी के विषय में, मेरे मंत्रियों के विषय में कोई शिकायत सुनी। गुप्तचर बोले, नाथ आपकी कीर्ति इस भूमंडल के सब लोगों को पवित्र कर रही है, हम लोगों ने घर घर में प्रत्येक पुरुष और स्त्री के मुख से आपके यश का वर्णन सुना है। राजा सगर आदि आपके पूर्वज कृतार्थ हो चुके हैं, किंतु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छाई थी जैसी इस समय आपकी है। आप जैसे स्वामी को पाकर सारी प्रजा कृतार्थ हो रही है, उन्हें ना तो अकाल मृत्यु का कष्ट है, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होती, यहाँ अकाल मृत्यु का मतलब ये समझो कि जब तक कोई नहीं चाहे, इच्छा ना करे मरने की, तब तक वो नहीं मरेगा, है ना, और मरने की इच्छा तभी करता है कोई व्यक्ति जब उसको आत्मज्ञान पूरी तरह से हो जाए और उसको निश्चित हो गया कि उसको अच्छा दूसरा शरीर अच्छी गति प्राप्त होने वाली है, तो फिर वो छोड़ता है अपनी इच्छा से शरीर, कितनी सुविधा है ना। किसी को मृत्यु का कष्ट नहीं है, रोग का भी भय नहीं है, कोई रोग नहीं है, राम के राज्य में कोई अस्पताल नहीं होते थे, कोई डॉक्टर नहीं होते थे, है ना, इतनी बड़ी कमी, आजकल कितने अस्पताल कितने डॉक्टर हैं, ये आजकल की जो है उन्नति, ये उन्नति है, लेकिन राम के राज्य में कोई डॉक्टर नहीं थे, दवाइयाँ नहीं मिलती थीं, अस्पताल नहीं होते थे, क्या है ये दोष है राम के राज्य का, बहुत बड़ा दोष है, हैं कोई डॉक्टर नहीं। कोई रोग ही नहीं होता था, कोई रोग नहीं होता था, किसी रोग का भय नहीं होता था। अब जी हम ज्यादा से ज्यादा अस्पताल खोल रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि बीमारियां ज्यादा हो रही हैं, है ना, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, है ना। आपकी विस्तृत कीर्ति सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है, मतलब उनका यश फीका पड़ रहा है, आपके यश को सुन करके ब्रह्मादि देवताओं को बड़ी लज्जा होती है। इस प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत के सब लोगों को पवित्र बना रही है। महाराज हम सभी गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण क्षण में आपकी मनोहर मुख का दर्शन करते हैं। गुप्तचरों ने ऐसा कहा, उन गुप्तचरों के मुख से इस तरह की बातें सुनकर श्री राम ने अंत में एक दूसरे दूत पर दृष्टि डाली और उसके मुख की आभा दूसरे प्रकार की हो रही थी। उसके मुख से ही पता चल गया उसने कुछ गलत सुना था, तो उसके चेहरे में वो भाव श्री राम ने देख लिया है ना। उन्होंने पूछा, महामते तुम सच सच बताओ, लोगों के मुख से जो कुछ जैसा भी सुना हो वो ज्यों कहते हो सुना दो, अन्यथा तुम्हें पाप लगेगा। श्री राम बोलते, वो गुप्तचर क्यों नहीं बता रहा है, वो सोचता है इसमें मुझे पाप लगेगा अगर मैं बताऊंगा भगवान श्री राम को कष्ट भी होगा और मुझे भी पाप लगेगा। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हें पाप लगेगा, ज्यों कहते हो बताओ, जैसा सुना ज्यों कहते हो बताओ, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। ऐसे हैं, ऐसे भगवान हैं, ज्यों कहते हो बताओ, नहीं तो तुम्हें पाप लगेगा। गुप्तचर ने कहा, स्वामी राक्षसों के व्रत से संबंध रखने वाले आपकी सभी कथाओं का सर्वत्र गान हो रहा है, केवल एक बात को छोड़कर आपकी धर्म पत्नी ने जो राक्षस के घर में कुछ काल तक निवास किया था उसके संबंध में लोगों का अच्छा भाव नहीं है। गत आधी रात की बात है, एक धोबी ने अपनी पत्नी को जो दिन में कुछ देर तक दूसरे के घर में रहकर आई थी धिक्कारा और मारा। ये देखकर उसकी माता बोली, बेटा ये बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते हो, तुम्हारी स्त्री है, रख लो, निंदा ना करो, मेरी बात मानो। तब धोबी कहने लगा, मैं राजा राम नहीं हूँ कि इसे रख लूँ। उन्होंने राक्षस के घर में रही हुई सीता को फिर से ग्रहण कर लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता, राजा समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याय माना जाता है, दूसरे लोग पुण्यात्मा हों तो भी उनका कार्य अन्याय समझा जाता है। उसने इस बारम्बार इस बात को दोहराया कि मैं राजा राम नहीं हूँ। उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किंतु सहसा आपका आदेश याद आया। क्या आदेश? कि दंड नहीं देना, यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे मार गिराऊं। क्या अगर आज्ञा दें तो मैं क्या करूं, मार गिराऊं? ये बात ना कहने योग्य और न्याय के विपरीत थी, तो भी मैंने आपके आग्रह से कह डाली, मैं तो नहीं कहना चाहता था। अब इस विषय में आप निर्णायक हैं, जो उचित कर्तव्य हो उसका विचार करें। गुप्तचर की एक एक बात जिसका एक एक अक्षर महाभयानक वज्र के समान मर्म पर आघात करने वाला था, सुनकर श्री राम बार बार उच्छ्वास खींचते हुए उन सब दूतों से बोले, अब तुम लोग जाओ और भरत को मेरे पास भेज दो। वे दूत दुखी होकर तुरंत ही भरत जी के भवन में गए और वहां उन्होंने श्री राम का संदेश क्या सुनाया। श्री राम का संदेश सुनकर बुद्धिमान भरत जी बड़ी उतावली के साथ राजसभा में गए और वहां द्वारपाल से बोले, मेरे भाई कृपा निधान श्री राम कहाँ हैं? द्वारपाल ने एक रत्न निर्मित मनोहर घर की ओर संकेत किया, क्योंकि राम जो है सभा में गए ही नहीं, राम सभा में गए ही नहीं है, तो उसी घर में भरत जी को बुलाया जो कि मतलब एकांत स्थान था। भरत जी वहां जा पहुंचे, श्री राम को विकल देखकर उनके मन में बड़ा भय हुआ। उन्होंने महाराज से कहा, स्वामी सुख से आराधना की योग आपका सुंदर मुख इस समय नीचे की ओर क्यों झुका हुआ है, आंसुओं से भीगा कैसे दिखाई दे रहा है, मुझे इसका पूरा पूरा यथार्थ कारण बताइए, आज्ञा दीजिए मैं क्या करूं। भाई भरत ने जब गदगद वाणी से इस प्रकार कहा, तब श्री राम बोले, प्रिय बंधु इस पृथ्वी पर उन्हीं मनुष्यों का जीवन उत्तम है जिनके यश का विस्तार हो रहा हो, अब कीर्ति के मारे हुए मनुष्य का जीवन तो मरे हुए के समान है, आज संपूर्ण संसार में विस्तृत मेरी कीर्ति कलुषित हो गई, इस नगर में रहने वाले एक धोबी ने आज जानकी के संबंध को लेकर कुछ निंदा की बात कह डाली है, इसलिए भाई बताओ अब मैं क्या करूं, क्या आज अपने शरीर को त्याग दूं या अपनी धर्म पत्नी सीता का ही परित्याग कर दूं, दोनों के लिए मुझे क्या करना चाहिए इस बात को ठीक ठीक बताओ। दोनों के लिए मतलब सीता के लिए मुझे क्या करना है, अपने लिए मुझे क्या करना है, ठीक ठीक बताओ मुझे। भरत जी ने पूछा, आर्य कौन है ये धोबी और इसने कौन सी निंदा की बात कही है? श्री राम ने धोबी के मुंह से निकली हुई सारी बातें जो दूत के द्वारा सुनी थी भरत जी से कह सुनाई। उन्हें सुनकर भरत ने दुख और शोक में पड़े हुए भाई श्री राम से कहा, वीरों द्वारा सुपूजित जानकी देवी लंका में अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। देखो पहला उत्तर क्या है कि अग्नि परीक्षा में शुद्ध प्रमाणित हुई। दूसरा, ब्रह्मा जी ने भी इन्हें शुद्ध बताया अपने मुख से है? और तीसरा, पूज्य पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ ने भी इस बात का समर्थन किया। ये सब होते हुए भी केवल एक धोबी के कहने से विश्ववंदित सीता का परित्याग कैसे किया जा सकता है? सही बात है नहीं? क्या सही है कि नहीं? सही है, बिल्कुल सही है। ब्रह्म आदि देवताओं ने भी आपकी कीर्ति का गान किया है, वो इस समय सारे जगत को पवित्र कर रही है। ऐसी पवित्र कीर्ति आज केवल एक धोबी के कहने से कलंकित कैसे हो जाएगी? ठीक है, धोबी कुछ कहे है? ब्रह्मा आदि देवता जिनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, धोबी के कहने से क्या कीर्ति कलुषित हो जाएगी? धोबी का है क्या महत्व? धोबी का महत्व क्या है, उसके बाद क्या महत्व है कि उसके कहने से कोई बात जो है अन्यथा हो जाए है? भला आप इस अपने कल्याण में विग्रह का परित्याग क्यों करना चाहते हैं? अपने शरीर का त्याग क्यों करना चाहते हैं? राम कहते हैं मैं अपने शरीर का त्याग करूं। आप ही हमारे दुखों को दूर करने वाले हैं, आपके बिना तो हम सब लोग आज ही मर जाएंगे। अगर आपने अपने शरीर का त्याग किया तो फिर हम क्या करेंगे? हम भी अपने शरीर का त्याग करेंगे। सीता जी तो आपके बिना क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकती, वो फिर क्या करेंगे? सीता जी भी अपना शरीर त्यागेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध तो यही है कि आप पतिव्रता सीता के साथ रहकर इस विशाल राज्य की रक्षा कीजिए। भरत जी ने कहा सही है। भरत के ये वचन सुनकर परम धार्मिक श्री राम इस प्रकार बोले, भाई तुम जो कुछ कह रहे हो वो धर्म सम्मत और युक्त युक्त है, परंतु इस समय मैं जो बात कह रहा हूं उसी को मेरी आज्ञा मानकर करो। राम क्या कह रहे हैं? तुमने जो कहा है वो बिल्कुल युक्ति युक्त है, धर्म सम्मत है, पर तुम मेरी आज्ञा मानकर करो जो मैं कह रहा हूं। मैं जानता हूं मेरी सीता अग्नि द्वारा शुद्ध पवित्र और लोक पूजित है, तथापि मैं लोकापवाद के कारण आज उसका त्याग करता हूं। इसलिए तुम जनक के सूर्य को वन में ले जाकर छोड़ाओ। श्री राम का यह आदेश पाते ही भरत जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तो कथा तो बहुत लंबी है, तो अभी हम यहीं पर ही छोड़ रहे हैं, और अब आप लोगों को मैं अवसर देना चाहता हूँ कि आप अपने विचार प्रकट करिए। आपके क्या विचार हैं? प्रश्न चर्चा, तो ये चर्चा का विषय है, ये विचार करने का विषय है। ठीक है, बोलिए किसको बोलना है। ये कहाँ तक उचित है श्री राम ने सीता का त्याग किया, कौन बताएगा? हाँ जी, ओ जोर से बोलो, यहाँ पे हैंड माइक दो, हैंड माइक लाओ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़ा अच्छा बताया। जो मैंने सुना है, जो भगवान राम ने सीता का परित्याग किया था वो ऐसा था कि सीता माता खुद चाहती थी कि मुझे वनों में जाना है, इसलिए भगवान ने उनका ऐसा कुछ किया कि उनको वनों में जाने का अवसर मिल जाए। तो क्योंकि भगवान राम को पता था सीता पवित्र हैं, लेकिन उन्होंने उनकी इच्छा जानकर उनको ऐसा वन में उनको भेजा था, ऐसा कुछ मैंने सुना है।
बहुत अच्छा उत्तर, अच्छा उत्तर है। सीता जी जाना चाहती थी तो कुछ समय के लिए जाना चाहती थी, लेकिन ज़्यादा समय के लिए उनको भेजा गया। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जो आजकल ज़्यादा प्रचलित है कि श्री राम को जो है सुख मिला ही नहीं, शुरू में वनवास हो गया, जैसे विवाह हुआ सीता के साथ तो वनवास हो गया, और वनवास के बाद आए जैसे राज्य उनको मिला तो फिर सीता का त्याग करना पड़ा, ऐसा नहीं है। विवाह के बाद भी श्री राम सीता अयोध्या में रहे 12 साल तक, ठीक है, और फिर 14 साल के वनवास के बाद फिर श्री राम और सीता अयोध्या में रहे कितने साल तक? 10,000 साल तक, ठीक है ना। उसके बाद सीता को जो वनवास मिला वो 12 साल का जो वनवास है वो कुछ भी नहीं है। 10,000 साल की तुलना में 12 साल का जो वनवास सीता जो को मिला वो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये भी कि सीता का अगर त्याग किया श्री राम ने तो ऐसे त्याग नहीं किया कि भाई मतलब ऐसे जंगल में छोड़ दिया जहाँ कोई देखभाल करने वाला ना हो, ना तो उनके शरीर की रक्षा हो, ना उनके चरित्र की रक्षा हो, इससे कोई मतलब ऐसी जगह छोड़ दें कोई व्यक्ति कि जहाँ उसके चरित्र की ही रक्षा ना हो, चरित्र ही फिर दूषित हो जाएगा स्त्री का, या जो है उसके शरीर की रक्षा ना हो, तो ऐसा तो नहीं था, ऐसा नहीं था, है ना। ये सबसे बड़ी जो बात है श्री राम ने मतलब जो दिखाना चाहा, राजा का कितना बड़ा कर्तव्य है कि धोबी ने जो है जो आरोप लगाया वो ये आरोप लगाया कि राम जो है स्त्री के लोभी हैं, मतलब वो जो है इंद्रिय तृप्ति के कारण जो है उन्होंने सीता को रखा। तो राम जो है मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि वे ऐसे राजा हैं जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं है, तो वे जो है मतलब कैसे हैं, मतलब पूर्ण ब्रह्मचारी। तो राजा का ये कर्तव्य होता है कि प्रजा को जो है विरक्ति की शिक्षा दे, है ना। और जब राजा मतलब पत्नी के बिना रहे या पत्नी के साथ भी रहे और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे तो ऐसे में तो प्रजा भी जो है मतलब ऐसा बनेगी, है ना। और कोई व्यक्ति अगर ये बात उठाए और प्रजा के अंदर ये बात फैले कि भाई राजा जो है मतलब पत्नी में आसक्त है, तो ये जो है क्या होगी बात, राजा के लिए भी लज्जाजनक होगी और प्रजा भी फिर ऐसी बनेगी, प्रजा भी जो है पत्नी में आसक्त होगी, है ना। तो कैसे जो है आदर्श रूप से गृहस्थ बना जाए, कैसे गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए, केवल संतान उत्पन्न करने के लिए ही सहवास किया जाए, तो ये जो बातें हैं ये भी बताना आवश्यक था श्री राम के लिए। आप समझ रहे हैं, तो इसमें कुछ गहराई है कि भगवान राम जो है एक आदर्श राजा बनकर के एक आदर्श की स्थापना करना चाहते हैं। स्त्री जो है ये इंद्रिय तृप्ति का साधन नहीं है कि पत्नी जो है केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, ये नहीं है। हाँ जी, आपको कुछ कहना है। हाँ, इनको हैंड माइक दो, हैंड माइक, हैंड माइक।
हरे कृष्ण जी, धोबी की जो भी बातें था भगवान रामचंद्र जो जो भी बातें किए वो भरत से क्यों किए, गुरु महाराज से अपने गुरु से क्यों नहीं विचार विमर्श किया सब?
हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है कि जो कुछ भी कहना था श्री राम को तो गुरु जी से कहना था, वशिष्ठ मुनि से कहना था, भरत जी से क्यों कहा श्री राम ने, इसका क्या उत्तर है? ठीक कह रहे हैं, श्री राम ने जो कुछ बात कही भरत जी से कही तो गुरु जी से कहते हैं, वशिष्ठ मुनि तो गुरु हैं उनके, इसका क्या उत्तर है? देखिए, हाँ, तो वो मना नहीं करते, वशिष्ठ मुनि मना नहीं करते, है ना। और वशिष्ठ मुनि मना नहीं करते और आदेश देते तो फिर राम के लिए जो है फिर ये कार्य करना संभव नहीं होता। लेकिन राम चूँकि प्रजा में वो आदर्श स्थापित करना चाहते हैं कि राजा मतलब कैसा होना चाहिए, अगर राजा जो है प्रजा की रक्षा कर रहा है तो वो जो है इंद्रिय तृप्ति में जरा भी आसक्त ना हो तभी वो प्रजा के लिए अच्छा कार्य कर सकता है। आप समझे, आजकल के जो नेता लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं तो प्रजा का शोषण करते हैं, तो प्रजा की फिर भलाई क्या करेंगे, प्रजा की कठिनाइयों को कहाँ उनको दूर करेंगे, है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, है 24 घंटे का जो है जो समय होता है अगर वो अपनी आवश्यकताएं पूरे में करने में लगाए हुए हैं, इंद्रिय तृप्ति लगाए हैं, तो कहाँ वो प्रजा की देखभाल कर पाएंगे। इन दिन रात श्री राम जो है प्रजा की देखभाल कर रहे हैं, तो ये भी जो है मतलब एक आदर्श है जो कि स्थापित कर रहे हैं। राजा का जो जीवन है वो ऋषि के समान है, जंगल में जो ऋषि लोग तपस्या करते हैं, है ना, और एक राजा है जो प्रजा के ऊपर शासन कर रहा है, दोनों का जीवन एक जैसा है। देखने में लगता है कि नहीं, कई प्रकार के भोग हैं राजा को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वास्तव में अंदर से वो राजा कैसा है, वो ऋषि है, उसको कहते हैं राजर्षि, ठीक है ना। हाँ जी, आपका प्रश्न है।
हरे कृष्ण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर कथा के लिए। तो जैसे भाई ये राम राज्य में धोबी के मन में गलत विचार कैसे आए, वो इतना अच्छा एनवायरनमेंट था इस एनवायरनमेंट उसके बाद।
ये अच्छा प्रश्न है, ये जो है इस प्रश्न का उत्तर आगे आएगा इसमें, अब तो समय नहीं इतना। लेकिन धोबी जो है पिछले जन्म में एक तोता था, है? और उसने जो है सीता जी को श्राप दिया था, तो ये कुछ बातें ऐसी हैं कि तोते के रूप में उसने जो है सीता को बहुत गलत शब्द कहे, और उससे फिर जो है ये धोबी बना, नीच धोबी बना, और फिर भी जो है इसने ऐसा जो व्यवहार किया, ऐसी निंदा की, तो अगले जन्म में फिर ये कंस का धोबी बना, मथुरा में कंस का धोबी बना। फिर भगवान कृष्ण को भी जो है उल्टा सीधा बोला, जब भगवान ने कपड़े मांगे तो बहुत उल्टे सीधे तरीके से बात किया, तो फिर भगवान ने एक हाथ ऐसे मारा तो उसका सिर अलग हो गया, तो उसको अपराध से मुक्त किया भगवान ने। तो ये जो है कुछ ऐसी बातें हैं। हाँ, आपका प्रश्न है।
सीताराम 10,000 साल के लिए इकट्ठे थे, तो फिर अभी जो यहाँ पे जब वियोग हुआ था वो कितने साल के लिए हुआ होगा?
क्या कहा, सुनने पर?
अभी जो सीताराम जी 10,000 साल के लिए इकट्ठे थे,
हाँ,
बन जाने के बाद,
हाँ, हाँ,
अभी दोबारा जो वियोग हुआ,
हाँ,
ये कितने साल के पीरियड?
केवल 12 साल, केवल 12 साल का वियोग हुआ, ठीक है ना। वास्तव में तो भगवान राम जो है अपनी लीला को समाप्त करना चाहते हैं, तो उन्होंने इस प्रकार से जो है सीता जी ने पुत्रों को भी जन्म दिया और सीता का त्याग किया, और उसके बाद फिर सीता जी जो है भूमि में प्रवेश कर जाती हैं, और फिर भगवान राम भी जो है ऐसी व्यवस्था होती है कि श्री राम भी जो है इस पृथ्वी का त्याग करके अपने धाम में जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके जो है अंतिम लीला है, 10,000 साल जो है पूरे हो चुके हैं, अब उनको जानने की इच्छा है, ठीक है। और कुछ? हाँ, आपका प्रश्न
जी। सीता नाम का अर्थ क्या होता है?
सीता राम का,
सीता नाम जो माता सीता का नाम है उसका अर्थ क्या?
अच्छा, सीता के नाम का अर्थ क्या है? सीता के नाम का अर्थ, जब हल चलाया जाता है, किसान जो है खेत में हल चलाता है, हैं, तो हल की जो नोक है वो उसको कहते हैं सीर, है ना, सीर, हल की नोक को कहते हैं सीर। और जो हल की नोक जो है जब जमीन के नीचे जाती है और वो नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, एक रेखा बनती है, उसको कहते हैं सीता, ठीक है ना। तो चूंकि उस रेखा से ही उत्पन्न हुई बच्ची, बालक, बालिका, ये जो बालिका है ये उस रेखा से उत्पन्न हुई, हल से जो है वो नीचे की मिट्टी ऊपर आई, तो उसी के साथ में ये बालिका भी जो है ऊपर आ गई, ठीक है ना। तो सीता से उत्पन्न हुई या सीर से उत्पन्न हुई, सीता सीर समुत्पन्ना ये भी कहते हैं, सीर से उत्पन्न हुई, सीमन हल की नोक से पैदा हुई ये बालिका, है ना, इसलिए सीता नाम पड़ा, ठीक है।
कोई और मतलब भी है?
हैं,
इसका कुछ और मतलब भी है?
और अर्थ, और तो बहुत से अर्थ होंगे, क्योंकि बड़े रहस्य हैं भगवान के नाम में, बहुत रहस्य हैं, लेकिन मैंने इतनी बताया, इतनी मैं जानता हूँ। आपका
थोड़ा सा प्रश्न है प्रभु जी, भगवान राम जो है इतना अच्छे ढंग से राज्य का पालन करते थे, तो अभी जिस समय इतने सारे पाप हो रहा है देखते हैं, तो इसमें फिर भक्तों को क्या करना चाहिए? क्योंकि हाँ, पाप तो रुकेगी नहीं, पाप तो होगी होगी, कलयुग चल रहा है, वो तृतीय युग था, तो इस पापों को देखते हुए भक्तों को क्या करना चाहिए?
इनका अच्छा प्रश्न है, पाप को देखते हुए भक्तों को क्या करना चाहिए। देखिए, राम राज्य, प्रभुपाद कहते हैं कि जो राम राज्य है वे फिर से आ सकता है। लोग राम राज्य तो चाहते हैं लेकिन राम को नहीं चाहते, है ना। तो आप अगर राम राज्य चाहते हैं तो आपको राम के आदेशों का पालन करना होगा, ठीक है ना। तो राम राज्य में कितनी सुविधाएं हैं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई चोरी नहीं, है ना, कोई आतंक नहीं, है कितनी सुविधाएं हैं, है ना। लेकिन यह है कि राम की शिक्षाओं का भी पालन करना है, है ना। तो अभी तो क्या है कि हरे कृष्ण मंत्र है कलयुग में जो है, चैतन्य महाप्रभु ने जो दिया है, तो वही राम कलयुग में प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उनकी आज्ञा का जो है आप सर्वत्र आप जो है फैलाइए, प्रचार करिए, है ना। तो इस तरह से जो है लोग अगर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करेंगे, चार नियमों का पालन करें, है ना, व्यभिचार नहीं, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, तो राम राज्य की फिर से स्थापना हो सकती है, ठीक है ना। तो ये पूरा जगह जो है वैकुंठ फिर से बन सकता है, है ना। और प्रभुपाद ने जो है ये बनाए भी हैं, जैसे मंदिर हैं, मंदिर में जो भक्त लोग रहते हैं तो ये भी वैकुंठ का ही वातावरण जैसा है। तो अगर हम लोग जो है प्रभुपाद की शिक्षाओं के अनुसार अगर चलते हैं और लोगों को अगर इसी प्रकार प्रभुपाद की पुस्तकें देते हैं, कृष्ण का गुणगान है वो अगर प्रदान करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो देते हैं, तो इससे क्या होगा, राम राज्य की स्थापना होगी। आपका प्रश्न है
जी, जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को और उद्धव को शिक्षाएं दी थी, वैसे भगवान राम ने भी दी थी किसी?
भगवान कृष्ण ने जैसे अर्जुन को शिक्षाएं दी गीता के रूप में, तो भगवान राम ने भी, हाँ भगवान राम ने भी शिक्षाएं दी, और उनका वर्णन है, भगवान राम ने जो शिक्षाएं दी हैं उनका भी वर्णन मिलता है, कुछ रामायणों में मिलता है ना। लेकिन उस समय जो है इतनी आवश्यकता नहीं थी शिक्षाओं की, क्योंकि पहले लोग इतने अच्छे दिमाग के होते थे कि बचपन में उनको जो कुछ भी प्राप्त होता था ज्ञान, तो वो जो है उनका भूलता नहीं था, याद रहता था। तो गीता में भगवान ने कई श्लोकों में जो बात बताई कि शरीर नष्ट होता है लेकिन देही नष्ट नहीं होता, तो भगवान कृष्ण ने कई श्लोकों में ये बात बताई, लेकिन ये बात जो है इतनी सामान्य थी कि लोगों को जो है ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, सब लोग जानते थे, है ना। तो गीता में भगवान ने जो बातें बताई हैं है? और वे जो है परमेश्वर हैं, भगवान हैं, तो जो बातें बताई भगवान ने, तो ये बातें जो है लोगों के लिए बड़ी सामान्य थी, आप समझे ना। लेकिन जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा है, लोगों का ज्ञान बढ़ता जा रहा है, तो गीता का जो महत्व है वो बढ़ता जा रहा है। गीता बहुत दुर्लभ है, अब गीता का ज्ञान जो है बहुत दुर्लभ है, ठीक है ना। तो पहले जो है सामान्य व्यक्ति के जीवन में ये सब जो है ये सामान्य बातें थी कि वे जो है अगला जीवन जानते थे, अगला जीवन होगा कैसे होगा, हमें इसके लिए क्या करना है, और सर्वोच्च गति क्या है जो मनुष्य जीवन में प्राप्त हो सकती है, तो ये सब बातें जो है पहले लोग जानते थे इन बातों को। तो गीता में भगवान ने जो बताया मेरी शरण में आओ, है ना, तो ये बातें जो है पहले सामान्य रूप से लोगों को ज्ञात थी, ठीक है।
प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी अभी जो उत्तर दिए आपने, तो प्रभु जी इसमें लेकिन अभी देखते हैं हम लोग, प्रचार भी बढ़ रहा है और पाप भी बढ़ रहा है, पहले इतने गलत चीज नहीं हो रही बढ़ रही है, इसको क्या सोचना चाहिए। और दूसरा प्रभु जी, भगवान राम टोटल कितने वर्ष के लिए रहे धराधाम पे?
भगवान राम कितने वर्ष तक रहे
धराधाम?
वो तो हमने बताया 10,000 साल, क्योंकि 15 साल में उनका विवाह हुआ, भगवान राम जब 15 साल के थे उनका विवाह हुआ, और फिर 12 साल वो रहे अयोध्या में, तो कितना हो गया 27 साल, फिर 14 साल का वनवास हुआ, तो कितना हो गया 41 साल, ठीक है ना। अब वो 10,000 साल और उन्होंने राज्य किया, तो उसको भी 10,000 साल मतलब मोटे तौर में कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहीं 11,000 साल भी कहा जाता है, 10,000 साल, इस तरह की बातें बताएंगे, ठीक है।
दूसरा उत्तर
अच्छा, प्रचार बढ़ता जा रहा है और पाप भी बढ़ते जा रहे हैं। ये कलयुग का जो है ये धर्म है, तो कलयुग को भी भगवान ये सुविधा देते हैं, क्योंकि कलयुग का समय चल रहा है, ठीक है ना। तो कलयुग जो है भगवान कलयुग को भी नष्ट नहीं करते हैं, कलयुग को भी भगवान आश्रय देते हैं, ठीक है ना। तो कलयुग जो है लोगों से पाप कराता है, हालांकि कलयुग का समय बहुत कम है, दूसरे युगों की तुलना में कलयुग का समय बहुत कम है, लेकिन कलयुग जो है ये पापों का भंडार है, दोषों का भंडार है, तो रहेगा, ठीक है ना। जो लोग अपनी रक्षा चाहते हैं तो उनके लिए रक्षा का उपाय भी दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार से जैसे बरसात का जब समय होता है तो छाते भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना, तो बरसात भी हो रही है, लेकिन आप अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो छाता लीजिए, ठीक है ना। तो ये सब, अब देखो आजकल की टेक्नोलॉजी जो है इसमें मतलब बड़ा नुकसान है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की सुविधा और बढ़ती जा रही है टेक्नोलॉजी, लेकिन वही टेक्नोलॉजी जो है अगर भगवान की सेवा में लगाया जाए तो इसे जो है मतलब बहुत फास्ट ये भगवान के धाम में ले जाएंगे, है ना। धन्यवाद। श्री राम कथा महाभूत सौ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।